फिरौन ने चारों तरफ से जादूगर जमा किए। अब जादूगर आए हैं, जरा जादूगरों की सोच देखिएगा और जादूगर और नबी का फिर फर्क भी आपको दिखेगा। उन्होंने कहा कि इन्होंने जादूगरों ने, अगर हम गालिब रहे तो हमें इसका सिला तो ज़रूर मिलेगा ना। अमूमन ऐसे लोग देखिए बहुत चापलूस होते हैं, और नजराने और तोहफे और बेलें लेना इनको अच्छा लगता है। कहने लगे अच्छा, अगर आज हम मूसा के मुकाबले में जीत गए तो हमें कुछ मिलेगा ना। फिरौन ने कहा कि हाँ, और तुम मुकर्रब बारगाह हो गए, यानी तुम मेरे बहुत क्लोज हो जाओगे, सीक्रेट्स हो, मेरे सेक्रेटरी बन जाओगे। फिर इन्होंने मूसा से कहा, आप फेंकते हैं या हम फेंकें? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तुम ही फेंको। ये मूसा का एतमाद है। हम कहते पहले मैं बात सुना लूँ, दूसरे ने पहले सुना ली ना, फिर तीसरा बंदा कहेगा नहीं वो सच्चाई है झूठी है। आप हक की पुड़िया दबा के रखिए, सारे अपनी बातें सुना लें, फिर आपको कोई कह दे आया बाप अपनी बात कर लें, फिर आप देखें क्या होता है। हक बोलता है, सर चढ़ के बोलता है। अगर आप सच्चे हैं, आपके पास खैर है, बस खैर रखें। कई लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी छोटी-छोटी खयानतों का शिकार हो जाते हैं। तो मूसा ने पूरे शौर से कहा, तुम फेंको। उन्होंने जो अपने अनछर फेंके तो निगाहों को मसखूर और दिलों को खौफजदा कर दिया और बड़ा ही ज़बरदस्त जादू बना लाए। हमने मूसा को इशारा किया कि फेंको अपना सा, उसका फेंकना था कि आन की आन में वो इनको इनके झूठे तिलसम को निकलता जा रहा था। यानी जादूगरों के पास तो रस्सियाँ थी, मूसा अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह का कलाम था, लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम का जो सांप था उसने सबको खा गया, सबको खा गया। इस तरह जो हक था वो हक साबित हुआ और जो कुछ उन्होंने बना रखा था वो बातिल होकर रह गया। और फिरौन और उसके साथी मुकाबले में मगलूब हुए और फतेहमंद होने की बजाय उल्टे जलील हो गए। और जादूगरों का हाल ये हुआ कि गोया कि किसी चीज़ ने अंदर से इनको सजदे में गिरा दिया। कहने लगे, हमने मान लिया रब्बुल आलमीन को, उस रब को जिसे मूसा और हारून मानते हैं। ये है बंदगी का मुकाम। एक दफ़ा दिल के अंदर अल्लाह की असमत आई, फिर जाने नहीं दिया, फौरन पकड़ लो, क्लिक कर लो। आप देखिए कि बाज़ बच्चे गेम भी खेलते हैं ना, ऐसे हाथ खोलते हैं बंद करते हैं, किसी का हाथ अंदर आता है तो चोट लगती है और अगर हाथ उठ जाए तो ऊपर चला जाता है। वो एक सेकंड का क्लिक होता है जो आपको ग्रैब करता है, आपकी ग्रिप बन जाता है। हिदायत के लिए अल्लाह सुभान तआला ज़िंदगी में कोई एक ऐसा मौका लेके आते हैं, अगर उस वक्त दिल खुला हो ना तो हिदायत का पानी अंदर गया, साथ ही ऊपर से दिल बंद। अब हिदायत अंदर आके दिल बंद हो गया, खुशकिस्मत दिल है। यही है जिसका पिछले पारे में जिक्र पड़ा कि यमशी भी फिन नास। लेकिन हिदायत आई और आपका दिल यूँ खुलता बंद हो रहा, हो सकता है जब हिदायत ऊपर टच करने लगी तो दिल बंद था और आपका दिल अंदर से खाली रह जाएगा। फिरौन के जादूगरों ने मूसा के रब को पा लिया जबकि फिरौन ना पा सका। क्यों? क्योंकि उनके दिल में तासुब नहीं था, वो क्लीन और क्लियर दिल से आए थे। कुछ लोग आते ही तनकीद के लिए, कुछ लोग आते ही खामियां चुनने के लिए, ख़राबियां देखने के लिए, उनको कभी हिदायत नहीं मिलती। देखिए स्टोर्स में बीसियों चीज़ें पड़ी, बल्कि हज़ारों चीज़ें पड़ी होती है ना, आपकी कॉट में क्या जाता है, जो आप लेने जाते हैं, जो लेते हैं दूध ले लिया, बटर ले लिया, ब्रेड ले ली, बाकी चीज़ें क्यों नहीं आती आपकी कॉट में? आपका लेने का इरादा ही नहीं था, कोई ज़बरदस्ती कहेगा भी तो आप कहेंगे इसकी ज़रूरत नहीं। इसी तरह याद रखिए, हिदायत सिर्फ उसको मिलेगी जो हिदायत के इरादे से आएगा। फिरौन के जादूगरों ने हिदायत पा ली और अंदर से सजदे में गिर पड़े, हक साबित हुआ और मान गए। और साथ ही रब्बुल आलमीन के बाद मूसा और हारून के रब की बात की कि कहीं फिरौन ना खुश हो जाए कि ये मुझे रब्बुल आलमीन कह रहा है, क्योंकि फिरौन खुद को कहा करता था अना रब्बुकुमुल आलमीन, मैं तुम्हारा रब्बुल आलमीन हूँ। तो यहाँ उन्होंने दिल खोल लिया, फिरौन के ऊपर चोट पड़ी। ये तो उसकी अना को हर्ट करना था कि उसके अपने साथी अब इनके साथ शामिल हो रहे। अल्लाह अकबर। फिरौन ने कहा, तुम इस पर ईमान ले आए कबल इसके कि मैं तुम्हें इजाज़त दूँ? यकीनन ये कोई खुफिया साजिश थी जो तुम लोगों ने इस दारुल सल्तनत में की है। देखिए अपने साथियों पर शक कर रहे, कल तक उनको कह रहे तुम मेरे मुकर्रब होगे, अब कह रहे तुम मूसा के साथ मिले हुए हो। क्यों ऐसा कर रहे हो? ताकि इसके मालिकों को इक्तदार से बेदखल कर दो। फसौफ तआलमून, धमकियाँ। अच्छा तो अब इसका नतीजा तुम्हें मालूम हुआ जाता है, मैं तुम्हारे हाथ पाँव मुखालिफ सिमतों से कटवा दूंगा और इसके बाद तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। धमकियाँ, थ्रेटनिंग। जवाब सुनिए, यह है बंदगी के रंग में डूबे हुए बंदे का जवाब। कालू, वो बोले, इन्ना इला रब्बिना मुनकलिबून, डोंट वरी, हम तो अपने रब की तरफ पलटने वाले ही हैं। चलो देर किस बात की, तुम जल्दी भिजवा दो, हमें मार दो, हम तो जाएंगे। ये मोमिन की मौत है कि वो अल्लाह से मिलने के लिए मुंतजर होता है। तो जिस बात पर हमसे इंतकाम लेना चाहता है वो इसके सिवा कुछ नहीं कि हमारे रब की निशानियाँ जब हमारे सामने आ गईं तो हमने इनको मान लिया। ऐ रब हम पर सब्र का फैजान कर और हमें दुनिया से उठा तो इस हाल में कि हम तेरे फरमाबरदार हों। किसने सिखाई ये बातें, कौन सा कोर्स किया, कौन सी क्लास ली, ये फितरत के अहद में बंधे हुए थे, तासुब की चादर नहीं थी इसलिए उनको बात समझ आ गई। अल्लाह अकबर। आप देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में तो एक असा था ना और सांप ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा क्या था, कुरान। मूसा का असा तब तक असा था जब तक मूसा के हाथ में था। आज अगर वो कहीं मौजूद भी है ना तो कोई उसको पकड़ेगा तो वो सांप नहीं बनेगा और वो हाथ जद पैसा नहीं बनेगा, वो मूसा के साथ ख़त्म हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा भी इसी तरह दुनिया में रहती दुनिया तक लोगों को मशहूर करता रहेगा। फिर आज क्यों लोग इस तरह इस्लाम नहीं कबूल कर रहे, फिर आज क्यों लोग इतनी जल्दी रब को नहीं पहचानते? इसकी वजह यह है कि कुरान तो है लेकिन वो हाथ नहीं जो कुरान को पकड़े। आज हम कुरान पढ़ते तो हैं, साहिब कुरान नहीं। अलामा इकबाल का बड़ा दर्द है शेरों में, अगर आप कभी पढ़ें इस मौजू पर, कि तू साहिब कुरान नहीं है। आज हमारा मौजज़ा तो देखिए 1400 साल से एज इट इज़ पढ़ा हुआ है, ना उसमें ज़ेर बदली, ना ज़बर बदली, ना मानी बदला, ना मफहूम बदला। आज उम्मत मुस्लिमों के इसके साथ हाल के यकीन करें, आज अगर आजकल अगर आप लोग तरावियाँ सुन रहे हैं तो आप इस दौलत को महसूस कर सकते हैं। ये कितनी बड़ी दौलत है कि कुरान सुने और आपको समझ आए। कितने लोग हैं जो लिटरली तरावियों में जाते हैं, जहाँ भी जाएँ हाथ खड़े करें, बहुत थोड़े लोग, मे भी 10-20%। मुश्किल है आप लोगों के लिए जाना, घर में मर्द होते हैं, रात को तब अकेले नहीं जाएंगे, ऑफकोर्स सात मर्दों को लेके जाके देखिए और इसको दिल पे ले। मूसा के जादूगरों को सिर्फ एक जादू का मौजज़ा दिखा बज़ाहर तो वही मान लिया है, हमारे सीनों में कुरान आए तो हम ठंडे बैठे रहे, खाते रहेंगे, फिर खा लेंगे, पी लेंगे, इफ्तारियाँ भी कर लेंगे, बड़ी ज़िंदगी बड़ी है। देखिए गम की बात है, 8-7 दिन गुजर गए रमज़ान के, गुजर जाएगा, इसका फ़ायदा उठाएँ, आधा फ़ायदा ना लें। इस कुरान से अपनी रातों को मुनव्वर करेंगे, आप देखेंगे सुबह आप कितनी एनर्जी में बैठे होंगे। वरना याद रखें आप जाते भी इसलिए नहीं होंगे कि नींद पूरी हो जाए और सुबह फिर नहीं आते, या सुस्ती के साथ आते हैं या लेट होते हैं कि हम तकलीफ़ में हैं। आप जितने फ्रेश होंगे जितना, और आपको जो एनर्जी मिलती है कुरान पढ़ के, आप यकीन नहीं कर सकते। और मज़े की बात है जिधर भी जा रहे हैं वही पारा, जो सुबह पढ़ रहे हैं वही इधर कमोबेश वही पारा होता है, और जो मेरे साथ जाते हैं उनकी सख्ती आ जाती है। एक ही जुमला सीखा हुआ, बंदगी सीखी है, शुक्र है इस दफ़ा बंदगी आ गई हमारे हाथ में है। तो बहरहाल यह कि इस कुरान को अपने दिल पे लें। देखिए थोड़े दिन रह गए, मुझे ऐसी फील हो रहा है जो मैं अपने दिल की बातें आपसे करती हूँ ज़्यादा इस बातों में, कुरान में तो दिल की बात नहीं हो सकती लेकिन मिसालों में तो दिल की बात होती है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे किसी जगह जाने का बहुत इंतज़ार था। मिसाल है कि मिसाल दे देती हूँ कि आप में से किसी को बहुत शौक़ है कि आप नियाग्रा फॉल देखें, आप इस सोच के साथ एक महीने का ट्रिप बनाते हैं कनाडा का, टोरंटो का, बच्चों को लेके जाएं और आप वहाँ जाते हैं, वहाँ इतनी चीज़ें हैं, हर दिन आपको क्या गम लग जाता है, हाय एक दिन चला गया, एक दिन चला गया। बल्कि कहते हैं कि आधे दिन जब शुरू होते हैं ना, खत पूरे होते हैं तो उसके बाद उल्टी गिनती शुरू हो जाती, अब इतने रह गए। मुझे बिल्कुल रमज़ान से यही फीलिंग आ रही है, क्या इतने थोड़े दिन रह गए इंजॉय करने के, हाँ इतने थोड़े दिन रह गए इस कुरान को एंजॉय करने के। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के बाद भी ये कुरान हाथों में ही होगा हमारे, लेकिन वो कैफियत, वो फीलिंग्स बदल जाती हैं। तो जो साथी ये सोच के घरों में बैठ के सुनते हैं कि हम रोज़े की कमज़ोरी के साथ नहीं आ सकते या हम थक जाते हैं, वो इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दें। जितना ज़्यादा आप इसके साथ अपने आप को आगे लेके आएंगे, आप देखेंगे कि उतना ही अल्लाह के हुक्म से आपका दिल ज़्यादा खुलेगा। बाकी अल्लाह ताला आप सबके लिए सब मामलों को आसान करे। अब देखिए फिरौन की बुखलाहटें, घबराहटें, उसके तो उस पाया सल्तनत में रेशा आ गया, राशा आ गया कि ये मेरा इतना बड़ा गिरोह जादूगरों का, जो वो मुसलमान हो गया, कहते 70,000 जादूगर थे। अब सोचिए फिरौन का तो दिल ना डूब गया होगा कि उसकी कौम के 70,000 लोग दूसरी पार्टी में चले गए। सियासी लोग तो ऐसे ही बातें करते हैं। وقال الملأ من قوم فرعون تذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض। अब ये देखिए फिर उश्किलें देने वाले जो पीछे से पट्टियाँ पढ़ाते हैं, फिरौन बुरा इतना नहीं था, अगर उसके साथी उसको बुरी बातें ना कहते। फिरौन से उसकी कौम के सरदारों ने कहा, क्या तू मूसा और इसकी कौम को यूं ही छोड़ देगा कि मुल्क में फसाद फैलाएं और वो तेरी और तेरे माबूदों की बंदगी छोड़ बैठे? फिरौन ने जवाब दिया, मैं इनके बेटों को कत्ल कराऊंगा और इनकी औरतों को जीता रहने दूंगा, हमारे इकतदार की गिरफ्त इन पर मजबूत है। धमकियाँ। मूसा ने अपनी कौम से कहा, अल्लाह से मदद मांगो और सब्र करो। ये कब मांगनी है? जब जालिम हुक्मरानों की धमकियाँ, जंग की बातें, गोलियाँ बरसा देंगे, एटम बम बरसा देंगे, तो इस्ताईनु बिल्लाहि वस्बिरु। इस्ताईनु बिल्लाह तो समझ आ गया, अल्लाह से मदद मांगो। सब्र क्या है? दीन पे जमने का सब्र, इताअत पे सब्र और मुनकर से रुकने का सब्र। ज़मीन अल्लाह की है, अपने बंदों में से जिसको चाहता है इसका वारिस बना देता है, और आखिरी कामयाबी उन्हीं के लिए जो उससे डरते हुए काम करें। उसकी कौम के लोगों ने कहा, तेरे आने से पहले भी हम सताए जाते थे और अब तेरे आने पर भी सताए जाते हैं। ये देखे ना फरमानियाँ, ना कदरियाँ। पहले बनी इसराइल चिपकी बैठी रही कि मूसा आइए ज़रा हमारी मदद करें, फिरौन से हमें बचाएं। और जब फिरौन ने दोबारा बच्चों के कत्ल का इरादा किया तो बनी इसराइल मूसा को ताने दे रही है कि जब तू दुनिया में नहीं आया तो उस वक़्त भी हमारे बच्चे मरवाए जा रहे थे और अब भी। उसने जवाब दिया, करीब है कि वो वक्त आए कि तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर दे। मूसा का ऑप्टिमिज्म। लीडर हमेशा नेगेटिव हालात में लोगों की हिम्मतें बनाता है। वो ये नहीं कहता, हाँ नहीं आराम से सो जाओ कोई बात नहीं, मुझे पता है आप बहुत बीमार हो। कहता नहीं, उठो शाबाश, मुँह धो लो, कंघी करो, चलो तुम आ जाओ, चलो नमाज में चलो, जा सकते हो। तो मूसा ने अपनी कौम का मोरल बुलंद किया, अल्लाह हमें भी ऐसा करने वाला बना दे और तुमको ज़मीन में खलीफा बनाए। क्यों? ये हाईलाइट करने का नुक्ता है। फ़यन्ज़ुरा कैफ़ तअमलून, फिर वो देखेगा तुम क्या काम करते हो। ये है असल इम्तिहान। जब कोई दूसरा काम कर रहा होता है ना, तो हम कहते हैं अच्छा नहीं कर रहा, उनको तो करने ही नहीं आता, हमारे माँ बाप को तो पेरेंटिंग आती नहीं थी, मैं देखना माँ बनूँगी ना कैसे बच्चे पालूँगी। जब बन के खुद तो कहते हैं, अम्मी आप कैसे पालती थी, हमारे बच्चे तुम्हारे काबू में नहीं आते। ये फ़यन्ज़ुरा कैफ़ तअमलून। दूसरे के हाथ में चाबी हो ना या दूसरे के हाथ में चमचा हो तो कहते हैं इसको ठीक नहीं चलाना आता, जब आपको दो तो कहते हैं इतना भारी चमचा था, हाँ इतना मुश्किल, इतनी बड़ी पतीली है। असल इम्तिहान ये है कि तुम्हें जब कोई नेमत मिले तो तुम क्या काम करते हो। बड़ी बड़ी बातें हम सब बड़ी करते हैं, हम अपने वक्त में अपने बड़ों को देख रहे होते हैं, ये ठीक नहीं करे, हम होते तो यूँ करते, ये काम इनको दिया हुआ ये नहीं ठीक करे, मुझे देंगे ना मैं बहुत अच्छा करूँगा। जब दिया जाता है तो फिर सारी बातें खुल जाती हैं। तो लिहाजा असल इम्तिहान नेमतों का है। बनी इसराइल वाले इम्तिहान में कामयाब है, वो कौन सा था? सब्र इस्तरार वाला। सब्र इस्तरारी था कि मुश्किल में पड़े थे, गुलाम थे, सब्र तो करना था। अब जब अल्लाह उनको हुकूमत दे रहा है, दौलत दे रहा है, माल दे रहा है, अब अकड़ते हैं। ये बिल्कुल हालात हम पाकिस्तानियों पे भी आते हैं। 14 अगस्त 1947 से पहले हम कामयाब थे, अल्लाह ने हमें तोहफे में मुल्क दिया, उसके बाद से आज तक अल्लाह खुद देख रहे हैं आसमानों से कि करते क्या है। फ़यन्ज़ुरा कैफ़ तअमलून, अल्लाह हमारे करतूत ठीक कर दे। وَلَقَدْ أَخَذْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ, ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک کے لیے قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا, شاید کہ ان کو ہوش آ جائے, مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا سامان آتا تو کہتے ہاں ہاں ہم اسی کے مستحق ہیں, یس وی ڈیزرو اٹ, یہ انداز, اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فالے بل ٹھہراتے, جیسے آج ہم دینداروں کو ٹھہراتے ہیں کہ سارا دنیا میں فساد انہیں کی وجہ سے, حالانکہ در حقیقت ان کی فالے بد تو اللہ کے پاس تھی مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے. انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ تو ہمیں مسخور کرنے کے لیے کوئی نشانی لے آئے, ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع, آخر کر ہم نے طوفان بھیجا. سوچی ذرا یہ کیسے عذاب ہوں گے, ان پہ آئے ہوں گے تو کیا فیل ہوا ہوگا. ٹڈی دل چھوڑے, یعنی ان کی فصلوں میں کیڑا پڑ گیا, سسریاں چھوڑی, سسریاں پھیلائیں, مینڈک نکالے, خون برسایا, بات کرنے کے لیے منہ کھولتے منہ میں مینڈک, خون برسا ان کے اوپر, کھانا پانی ان کا خون والا ہو جاتا. یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے, اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے. جب کبھی ان پر بلا نازل ہو جاتی تو کہتے اے موسیٰ تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر. سست قومیں دعا بھی مولویوں سے ہی کرواتی ہیں, آج ہمارا بھی حال ایسا ہی ہے. اگر اب کے تو ہم سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے, مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے हटा लेते तो वो यकलख्त अपने अहद से फिर जाते। खुद से पूछिए, खुद एहतसाबी, क्या मुश्किल हालात में अल्लाह से जो वादे करती हूँ मुश्किल के टलने पे उस पर कायम रहती हूँ? ये आपका नुक्ता बंदगी होगा। अगर पलट जाते हैं तो फिर बहुत ज़रूरत है अभी बंदा बनने की। तब हमने इनसे इंतकाम लिया और इनको समंदर में गर्क कर दिया, क्योंकि उन्होंने हमारी निशानियों को छुटलाया था और इनसे बेपरवाह हो गए। وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، और उनकी जगह हमने इन लोगों को जो कमज़ोर बना कर रखे गए थे इस सरजमीन के मशरक व मगरब का वारिस बना दिया, जिसे हमने बरकतों से माला माल किया था। इस तरह बनी इसराइल के हक में तेरे रब का वादा खैर पूरा हुआ, क्योंकि उन्होंने सब्र से काम लिया। किसी भी कौम में कब मदद पाती हैं अल्लाह की? जब वो सब्र करती हैं। और फिरौन और उसकी कौम का वो सब कुछ बर्बाद कर दिया जो वो बनाते और चढ़ाते थे। यहाँ बनी इसराइल का एक दौर पूरा हुआ। फिरौन डूबता है और बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने कामयाबी दी।